इशिका वसुधा से मिलने के लिए उसके प्राइवेट रूम में आई हुई थी। वहां उसने राधिका और आयशा को जाते हुए देखा। राधिका को देखते हुए अक्सर इशिका को यही लगता था कि काश उसे भी कोई इतनी प्यार करने वाली माँ मिलती। उनके जाते ही इशिका वसुधा की तरफ पलटी ही थी कि वसुधा ने राधिका को देख लिया था। वसुधा ने राधिका को इशिका की माँ कहकर पहचाना था। वो तुम्हारी तरह ही लगती है, शक्ल नहीं मिलती, पर कोई भी कह सकता है तुम उनकी बेटी हो, वसुधा ने मुस्कुराकर कहा। इशिका उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई। राधिका और इशिका के चेहरे में बस एक ही चीज को मिलती थी, और वो था उन दोनों का ही चेहरा ओवल शेप में था। इशिका की आंखों का कलर हल्का ग्रे था, जबकि राधिका की आंखें गहरे भूरे रंग की थीं। वो मेरी माँ नहीं है, इशिका ने बिल्कुल धीरे से कहा। फिर वो मन ही मन बड़बड़ाकर बोली, हाँ ये बात अलग है कि मैं हमेशा से चाहती थी कि वो मेरी माँ हो। वो मेरी आइडियल हैं, मैंने उन्हीं की तरह बनने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक मेरी आदतें उन्हीं की तरह हैं। कोई कितनी भी बकवास क्यों ना करे, उसे शांति से हैंडल करना मैंने उन्हीं से सीखा है। इशिका ने वापस वसुधा की तरफ देखा और इस बार थोड़ा तेज आवाज में कहा, दादी आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी, वो मेरी मॉम नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अपनी माँ के साथ कोई लड़ाई हुई है क्या जो रिश्ता मानने से इनकार कर रही हो? वही तुम्हारी माँ है, वसुधा ने थोड़ा सख्ती से कहा। वसुधा की बातें सुनकर इशिका की आंखें नम होने लगी थी, पर साथ ही उसे हंसी भी आ रही थी। दादी को कुछ भी याद नहीं था, फिर भी वो जो भी कहती थीं इतना कॉन्फिडेंट होकर कहती थीं कि सामने वाला यकीन करने पर मजबूर हो जाता था। इशिका उन्हें कुछ बोलती उससे पहले अभिमन्यु वहां आ गया था। उसके हाथ में कुछ बैग्स थे। अभिमन्यु ने उन्हें देखकर कहा, चलिए आइए डिनर करते हैं। अभिमन्यु ने खाना अनबॉक्स करना शुरू कर दिया था। हमेशा की तरह वो हेल्दी और डिलिशियस फूड लेकर आया था, साथ में फ्रूट सैलेड भी था। खाने को देखने के बाद वसुधा ने अभिमन्यु से नाराजगी जताते हुए कहा, तुम्हें और कोई फ्रूट नहीं मिला था क्या? कैसे पति हो तुम? याद नहीं है क्या तुम्हारी पत्नी को स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है? वसुधा की बातें इशिका को हैरान कर देती थीं। वो जल्दी से सिर हिलाकर बोली, दादी आपको कैसे पता मुझे स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है? इशिका को स्ट्रॉबेरी से एलर्जी थी। इस बारे में उसने कभी वसुधा को नहीं बताया था, फिर भी वो जानती थी। अरे तुम्हें याद क्यों नहीं है? बीमारी मुझे है और भूल तुम जाती हो। तुमने बताया तो था स्ट्रॉबेरी खाने के बाद तुम्हारे बॉडी पर रैशेज होने लगते हैं, वसुधा ने हल्का हंसते हुए कहा। लेकिन मैंने आपको कब बताया था दादी? इशिका ने फिर से पूछा। वसुधा ने कुछ सोचते हुए से जवाब में कहा, काफी टाइम हो गया, शायद शादी से पहले तुमने ये बात मुझे बताई थी। इशिका को अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा था, उसकी याददाश्त भी काफी अच्छी थी। वसुधा की बातें सुनकर लग रहा था कि उसे काफी बातें याद आ रही हैं, तो इशिका ने झट से पूछा, दादी आपको बातें याद आ रही हैं, क्या आपको याद है हम दोनों की शादी कैसे हुई थी? मुझे याद नहीं आ रहा है, वसुधा ने जवाब दिया। इशिका ने कुछ नहीं कहा, पर मन ही मन उसे गुस्सा आ रहा था। अचानक उसकी नज़र अभिमन्यु की तरफ पड़ी, जो उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। बेहतर होगा कि तुम डिनर करने पर ध्यान दो, ना कि बार बार मेरी दादी को परेशान करने पर, अभिमन्यु ने उसे डांटते हुए कहा। इशिका ने उसकी बात पर सिर हिलाया। अभिमन्यु को अभी भी यही लग रहा था कि इशिका उनकी बीमारी का फायदा उठा रही है। इशिका ने गहरी सांस ली और बिल्लू को अपनी गोद में उठाकर बोली, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं थोड़ी देर में खा लूंगी, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं बाहर इसको टहला कर लाती हूँ। वैसे भी पूरे दिन ये ऑफिस में कैद था, ऑफिस में कैद लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, बोलते हुए इशिता ने अभिमन्यु की तरफ देखा। उसका इशारा सीधे सीधे अभिमन्यु के लिए था। इशिका ने बहाना बनाया, उसने उनके जवाब का इंतजार भी नहीं किया और बिल्लू को उठाकर बाहर चल दी। वो थोड़े ही आगे गई और फिर वहां खड़े होकर वसुधा के कमरे के दरवाजे की तरफ देखने लगी। वो धीरे से बोली, मुझे पता है तुम बात करने के लिए जरूर आओगे मिस्टर अखड़ू, तुमसे अकेले में बात करने का यही तरीका था जो मुझे समझ आया, अब जल्दी से बाहर आ भी जाओ। इशिका वहां खड़ी होकर अभिमन्यु के आने का इंतजार करने लगी। लगभग 5 मिनट बाद उसकी उम्मीद के मुताबिक अभिमन्यु बाहर आ गया था। अभिमन्यु उसके पास आया और आईज रोल करके बोला, मिस सिंघानिया आपको कुछ कहना है? मुझे सच में नहीं पता दादी मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती है, मेरा यकीन करो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया है, इशिका अपनी सफाई देते हुए बोली। अंदर जिस तरह से अभिमन्यु इशिका को देख रहा था, उसके मन में यही चल रहा था कि इशिका ने ये सब वसुधा के दिमाग में डाला है, तभी इशिका उससे अकेले में बात करना चाहती थी। उसे लगा अभिमन्यु उसे फिर से एक लंबा चौड़ा लेक्चर देगा, लेकिन उसने सिर्फ इतना ही कहा, ठीक है। अभिमन्यु के शब्द कहते थे कि वो इशिका पर यकीन करता है, लेकिन उसकी आंखें और इशिका को देखने का तरीका यही बताता था कि उसे इशिका पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है। एक तो ये इंसान अपने एक्सप्रेशंस इतने नॉर्मल कैसे रख सकता है, बोलता भी लिमिटेड है, इशिका मन ही मन बड़बड़ाकर बोली। कुछ पल रुककर वो अभिमन्यु से बोली, मिस्टर राजवंश क्या आप मुझ पर यकीन करते हैं? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता मिस सिंघानिया कि आप पर यकीन करना चाहिए या नहीं, अभिमन्यु रूखे तरीके से बोला। इशिका आगे कुछ कहती उससे पहले उसने देखा अभिमन्यु उसके बिल्कुल करीब आने लगा था। उसे पास आते देखकर इशिका अपने कदम पीछे लेने लगी। वो दीवार से जाकर लग गई थी। अभिमन्यु उसके बिल्कुल पास आया और अपना एक हाथ दीवार पर टिकाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मिस सिंघानिया आपको ये क्यों लगता है कि मुझे आपके सच या झूठ बोलने से फर्क पड़ेगा? आपकी इंटेंशन चाहे जो भी हो, फिलहाल आप मेरी दादी को खुश रख रही हैं। इसके बदले में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पूरी दुनिया से आपको प्रोटेक्ट करूंगा, वो हर एक चीज लाकर दूंगा जो आपको चाहिए। अभिमन्यु की वॉइस काफी इंटेंस थी। इशिका ने गहरी सांस ली। पूरे गोवा में अगर सबसे पावरफुल बिजनेसमैन कोई था तो वो अभिमन्यु राजवंश था, और कोई उसके आगे कुछ नहीं कर सकता था, ना उसकी फैमिली और ना ही कोई और इंसान, यहाँ तक कि सिंघानिया फैमिली भी नहीं। वो शख्स जो पूरे शहर को अपनी ताकत के आगे झुकाने की काबिलियत रखता था, वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता था, वो वसुधा के लिए कुछ भी कर सकता था, और ये उसकी बातों से साफ जाहिर हो रहा था। इशिका कुछ नहीं बोली तो अभिमन्यु ने कहा, मुझे नहीं पता कि तुम किस इंटेंशन से हमारी फैमिली के करीब आई हो, और ना ही मुझे फर्क पड़ता है। तुम दादी का ख्याल रख रही हो तो तुम मेरे लिए दुनिया के सबसे भरोसेमंद शख्स हो। हाँ ठीक है, ये बात आप दूर रहकर भी तो बोल सकते थे, इशिका ने सिर हिलाकर कहा। उसे लगा अभिमन्यु उससे दूर हो जाएगा, लेकिन अभी भी वो वैसे ही खड़ा था। अचानक उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सर्द हो गए थे। वो इशिका की आंखों में देखते हुए बोला, लेकिन अगर तुमने गलती से भी मेरी दादी को नुकसान पहुंचाया तो उसकी सजा तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हें क्या दूंगा। अपने घर तो क्या, तुम्हें पूरे गोवा में रहने के लायक नहीं छोड़ूंगा। दुनिया में कहीं भी चली जाना, मैं तुम्हें ढूंढकर तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगा। अभिमन्यु के बदले हुए बर्ताव को देखकर इशिका ने उसे खुद से थोड़ा दूर धकेला और कड़वाहट से बोली, अब तक कौन सा आपने मेरी लाइफ आसान बना रखी है मिस्टर राजवंश, आपने वाकई मेरी लाइफ बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अभिमन्यु को समझ नहीं आया कि इशिका किस बारे में बात कर रही है। वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। अभिमन्यु कुछ पूछ पाता कि तभी उन्हें पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, मिस इशिका सिंघानिया।
इशिका ने पीछे पलट कर देखा तो वो प्रोफेसर मिलर थे। उन्हीं के अंडर ही वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। प्रोफेसर मिलर इशिका के पास आए। तबीयत खराब होने की वजह से उनकी आवाज़ थोड़ी भारी हो गई थी। उन्होंने इशिका से कहा, तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर अच्छा लगा, क्या तुम्हें कोई जॉब मिली? अभिमन्यु राजवंश को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या तुम दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है क्या? अभिमन्यु चुपचाप उनकी बातों को सुन रहा था। प्रोफेसर से वो पहली बार मिल रहा था, लेकिन फिर भी वो उसका नाम ले रहे थे। अभिमन्यु उनकी तरफ पीट करके खड़ा था। प्रोफेसर ने आगे कहा, मिस्टर राजवंश को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने तुम्हारी डिग्री बीच में रुकवाने की कोशिश दी और तुम्हें धमकी दी कि तुम गोवा छोड़कर कहीं और चली जाओ। मुझे उनके जैसे बड़े आदमी से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। प्रोफेसर की बात सुनकर इशिका तिरछा मुस्कुराकर बोली, डोंट वरी सर, अब सब ठीक है। मिस्टर राजवंश ने मुझे जॉब भी दे दी है और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि अगर मैं उनके बताए अनुसार चलूं तो वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। इशिका बातों बातों में अभिमन्यु को ताने मार रही थी। इशिका को जॉब मिल गई थी, ये सुनकर उन्होंने राहत की सांस ली। फिर उन्होंने लेकिन अभिमन्यु को पीछे से देखा। अभिमन्यु अभी इंडिया आया था और वो काफ़ी कम लोगों के सामने जाता था, इसलिए उसे ज़्यादा लोग जानते नहीं थे। उन्हें याद आया पिछली बार आयशा और मालविका इशिका के किसी पति के बारे में बात कर रही थी जो कि आवारा था। अभिमन्यु को पीछे से देखते ही मिस्टर मिलर ने इशिका से पूछा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये तुम्हारा वही आवारा पति है ना जो कुछ नहीं करता? प्रोफेसर मिलर की बात सुनकर अभिमन्यु की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। इशिका ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ ये वही है, मेरे आवारा पति। अभिमन्यु तुरंत उनकी तरफ पलटा। प्रोफेसर मिलर ने अभिमन्यु की तरफ सख्ती से देखकर कहा, दिखने में तो काफी हट्टे कट्टे और लंबे चौड़े लग रहे हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? जी जरूर, अब आपने कह दिया है तो मैं एक अच्छी नौकरी करूंगा और अपनी पत्नी का ख्याल भी रखूंगा, अभिमन्यु ने सार्कास्टिकली कहा। और फिर इशिका का हाथ पकड़कर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, अंदर चलें, खाना ठंडा हो रहा है। इशिका ने उसकी बात पर हामी भरी और प्रोफेसर को बाय बोलकर जाने लगी। प्रोफेसर को उन्हें साथ देखकर काफी अच्छा महसूस हो रहा था। वो वहां से चले गए। उनके जाते ही अभिमन्यु ने इशिका की तरफ घूरते हुए देखा और फिर उसका हाथ झटक दिया था। मैं आवारा और जॉबलेस? बिल्कुल सही मिस सिंघानिया, अभिमन्यु चिढ़कर बोला और कमरे के अंदर चला गया। वहीं उसे इरिटेट होते देखकर इशिका को मजा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया विला में आयशा, आदर सिंघानिया और राधिका साथ में डिनर ले रहे थे। राधिका खाना खाने के बजाय अपने ख्यालों में खोई हुई थी। आदर्श उससे बहुत प्यार करता था। उसे परेशान देखकर उसने राधिका के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, क्या हुआ राधिका, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? राधिका कोई जवाब देती उससे पहले आयशा बोल पड़ी, मॉम इशिका की वजह से परेशान है। एक्चुअली आज हम हॉस्पिटल गए थे तो इशिका वहीं पर थी। और वो वहाँ क्या कर रही थी, आदर्श ने हैरानी से पूछा। उनके हिसाब से वो एक VIP हॉस्पिटल था जहाँ इशिका अपना ट्रीटमेंट कभी अफोर्ड नहीं कर पाती। मुझे नहीं पता, शायद वो मिसेज राजवंश के पास ठहरी हो, आयशा ने मासूम बनते हुए जवाब दिया। फिर आयशा कुछ पल रुक कर बोली, इशिका एक बार भी मॉम से मिलने के लिए नहीं आई। शायद वो मुझसे नफरत करने लगी है क्योंकि मैंने उसे विदेश भेजने की बात कही थी। लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी बेबी, ये सब मिस्टर राजवंश ने करवाया था। याद है ना उस दिन वो घर पर आए थे, तब इशिका ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया था और उन्होंने यही कहा था कि इशिका को हमें उसकी लिमिट में रखना चाहिए। हम तो उसका भला ही सोच रहे थे, आदर्श ने प्यार से कहा। उनके मुताबिक आयशा राधिका की बेटी थी तो वो उससे ज्यादा प्यार करते थे, उसकी गलती तक नजरअंदाज कर देते थे। वहीं अभिमन्यु का नाम सुनकर आयशा के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। अभिमन्यु ने उस दिन ऐसा कुछ नहीं कहा था, आयशा ने झूठ बोलकर वो सब किया था। आदर्श आगे बोला, देखो मैं मिस्टर अभिमन्यु राजवंश के साथ अपना नया वेंचर शुरू करने जा रहा हूँ तो उन्हें किसी भी कीमत पर नाराज नहीं कर सकता। इशिका की हरकतों की वजह से मेरे प्रोजेक्ट पर असर नहीं होने दे सकता हूँ मैं, वैसे भी वो मेरे लिए मायने नहीं रखती है। आदर्श की बातें आयशा को और डरा रही थी। वो कुछ कह पाती उससे पहले आदर्श का मोबाइल बजा। उसने देखा कि पृथ्वी चौहान उसे कॉल कर रहा था। आदर्श ने तुरंत कॉल उठाया और मुस्कुराकर कहा, हेलो मिस्टर चौहान, बोलिए कुछ बात करनी थी क्या? कहीं आपने उस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए तो कॉल नहीं किया? वो खाना खा रहे थे तो कॉल स्पीकर पर था। वहीं उनसे आयशा का दिल बैठा जा रहा था, उसे डर लग रहा था। इशिका अभिमन्यु के आसपास ही रहती थी तो कहीं गलती से भी उसका झूठ सामने ना आ जाए कि उसने अभिमन्यु का नाम लेकर इशिका को कॉलेज से निकलवाया था। फिलहाल के लिए इतना ही, लगता है आयशा का सच बाहर आने वाला है। अभिमन्यु अपने ऊपर उठने वाले सवालों को इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता। देखते हैं आयशा के साथ आगे क्या होगा। पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पाठ पर मिलते हैं।